मुंबई को अंडरवर्ल्ड ने बार बार दहलाया, मगर एक हसीना थी जिसने अंडरवर्ल्ड को अपने इशारों पर नचाया। आखिर कैसे बन गई वो मुंबई के गॉड मदर? गोलियों से ना डरने वाली हसीना क्यों दिल से हार गई? हसीना पारकर के दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन करें www.nowbharatgold.com पर।
इम्प्रूवमेंट जो हम देख रहे हैं, ये एक ही कारण है इसके लिए, और वो है कि हमने जबकि जून के महीने में हमने अनलॉक का प्रोसेस शुरू किया है, उससे काफी ज्यादा एक्टिविटीज तो स्टैगर्ड मैनर से खुल गया था। तो जैसे ही ये एक्टिविटीज खुल गया था, हमने देखा है कि प्रोडक्शन जो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो काफी उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट भी बढ़ गए थे, और उसी कारणवश हमने देखा है कि ये पॉजिटिव नंबर।
भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में सुधार को लेकर ये कहना है मदन सबनवीस का, जो केयर रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। नमस्कार, आज है शनिवार 28 नवंबर और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली मार्च कर रहे किसानों से बातचीत को तैयार केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को दिया वार्ता का प्रस्ताव। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली में घुसने की मिल गई है इजाजत। आज हरियाणा के कई हिस्सों, यूपी और उत्तराखंड के किसान भी राजधानी की ओर होंगे रवाना। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, राज्य सरकारों को फटकार। शीर्ष अदालत ने कहा, स्थिति बद से बदतर हुई, राज्यों को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए केस, 492 लोगों की जान गई। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज जाएंगे अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के कोविड वैक्सीन सेंटर। इस बीच ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रुप का आकलन है कि अगले साल के मध्य तक कोरोना की 10 वैक्सीन हो सकती हैं तैयार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को बीजेपी ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। एलजेपी नेता रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है ये सीट। पासवान को बीजेपी ने अपने कोटे से सदन में भेजा था। सुशील मोदी का चुना जाना लगभग तय, चुनाव 14 दिसंबर को होंगे। ईरान के शीर्ष न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकरीजादेह की गोली मारकर हत्या। मोहसिन को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता था। इस हमले के पीछे बताया जा रहा है इजराइल का हाथ। गंभीर हो सकते हैं दोनों देशों के रिश्ते। अब खबरें काम की। ओला, उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। अब जरूरी होगा राज्य सरकार का लाइसेंस। इससे ग्राहकों को सुरक्षा और कैब ड्राइवर्स को कई सुविधाएं मिल सकेंगी। कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2020-21 सेशन से होगी मातृभाषा में पढ़ाई। इनमें कुछ आईआईटी और एनआईटी भी शामिल। वहीं मेडिकल के पीजी कोर्सेज के लिए होने वाले नीट एग्जाम में इस बार हो सकती है 1 महीने की देरी। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है कोरोना से बंद पड़ी इकोनॉमी कैसे करने लगी अनुमान से बेहतर प्रदर्शन। पूरी तस्वीर समझने के लिए केयर रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस से बात की हमारे सहयोगी रमेश तिवारी ने।
कोरोना से बंद हुई इकोनॉमी अब खुलने लगी है। इसकी रफ्तार की तस्वीर अब अनुमानों से ज्यादा साफ है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इकोनॉमी की चाल में करीब 23% की गिरावट दर्ज की गई थी। अब दूसरी तिमाही में गिरावट सिर्फ 7.5% रह गई है। मदन जी, बताएं कि कैसे आई ये बेहतरी?
ये इम्प्रूवमेंट जो हम देख रहे हैं, ये एक ही कारण है इसके लिए, और वो है कि हमने जबकि जून के महीने में हमने अनलॉक का प्रोसेस शुरू किया है, उससे काफी ज्यादा एक्टिविटीज तो स्टैगर्ड मैनर से खुल गया था। तो जैसे ही ये एक्टिविटीज खुल गया था, हमने देखा है कि प्रोडक्शन जो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो काफी उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट भी बढ़ गए थे, और उसी कारणवश हमने देखा है कि ये पॉजिटिव नंबर ये जो देखा है इलेक्ट्रिसिटी में और मैन्युफैक्चरिंग में, और इसका कंट्रीब्यूशन हुआ कि ये जीडीपी का घटा, ये ग्रोथ रेट जो है, डी ग्रोथ रेट जो है 7.5% हुआ था, जो पहले क्वार्टर में 24% था।
जी, भारत में लॉकडाउन दुनिया में सबसे सख्त माना गया था, तो दूसरे देशों के मुकाबले देखें तो ये उपलब्धि कितनी बड़ी दिखती है, खासतौर से चीन के मुकाबले हम कहाँ हैं अब?
तो अगर हम चीन के मुकाबले कोई कंपैरिजन करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बराबर नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि चीन में ये कोविड का जो वायरस पहली बार जो आए थे वो पिछले साल था नवंबर और दिसंबर के महीनों में, और जब तक हमने मार्च पहुंचे थे जहां पे इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, उस समय अगर हम देखेंगे कि चीन में जो लॉकडाउन था इट वॉज मच मोर मॉडरेट देन व्हाट वी आर सीइंग इन इंडिया। तो जहां से हमने शुरू किया है हम यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका से कंपेयर करना चाहिए, और वहां पे जो लॉकडाउन था हमारे जैसे सख्त नहीं था, और अनलॉक भी जो हुआ था उन देशों में इट हैपन मच फास्टर देन व्हाट इट हैपन इन इंडिया। इसलिए जो हम भारत में देख रहे हैं ये सिक्वेंशली हम देखेंगे कि प्रोग्रेस होती रहेगी, लेकिन पूरे साल के लिए हम नेगेटिव ग्रोथ ही देख रहे हैं, वो शायद 7.7% के बीच में होगा, तो टॉकिंग ऑफ समथिंग बिटवीन 7.7% and 7.9%।
जी, एक बात ये भी है कि इकोनॉमी की रफ्तार तो कोरोना के पहले ही धीमी पड़ रही थी, और ये जो दूसरी तिमाही में बेहतरी दर्ज की गई है उसमें त्योहारी सीजन का भी असर समझा जा रहा है। खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि फेस्टिवल के बाद की डिमांड पर नजर रखनी होगी, आपको क्या लगता है?
तो जो आरबीआई गवर्नर ने बोले हैं आई थिंक दैट इज परफेक्टली राइट, क्योंकि जो भी हमने देखा है कि वैसे तो हमारा फेस्टिवल सीजन जो है त्योहारें वो अक्टूबर नवंबर में आते हैं, और उसका प्रिपरेशन जो होता है जो भी हम देखते हैं जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो अगस्त सितंबर के महीने में हम देखते हैं, तो वो ताकि जब लोग स्पेंडिंग के लिए बाहर आते हैं, अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कपड़े खरीदना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल या कोई मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, वो स्टॉक रहना चाहिए। तो इसलिए हमने देखा है कि जो प्रोडक्शन हुआ है ये सेकेंड क्वार्टर में दैट इज टू फीड द डिमांड विच इज कमिंग इन अक्टूबर नवंबर। तो जो आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं कि ठीक है जो अब सेकेंड क्वार्टर में हुआ है दैट इज गुड फॉर द थर्ड क्वार्टर, लेकिन थर्ड क्वार्टर में अगर बनना है तो दैट वी हैव टू सी वेदर डिमांड कैन बी सस्टेन। तो यही तो हमारे लिए भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यही होप है कि दैट हैपन्स एंड पीपल विल कंटिन्यू स्पेंडिंग, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर से हो सकता है कि जो प्रोग्रेस हमने देखा है उसमें स्लो डाउन होगा।
जी, इकोनॉमी की को और रफ्तार देने के लिए स्टिमुलस यानी टॉनिक का इंतजाम लगातार किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि इनसे कितना फर्क पड़ा है, और दूसरी बात ये कि चूंकि जीएसटी की वसूली के आंकड़े अच्छे रहे हैं तो क्या आगे भी पैकेज आने की उम्मीद की जा सकती है?
कि पहली बार हम ये याद रखना चाहिए कि जो भी स्टिमुलस गवर्नमेंट दिया है वो सप्लाई साइड पे थे, जो जब हम सप्लाई साइड बोलते हैं दिस मीन्स दैट जैसे कि जो आरबीआई का मेजर्स है लिक्विडिटी में या क्रेडिट गारंटी दे रहे हैं, दिस इज ऑल मेंट टू गिव अ स्टिमुलस इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग कंपनीज टू गेट क्रेडिट एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस। लेकिन फाइनली में आखिर में जो होना चाहिए कि डिमांड होना चाहिए, तो डिमांड की साइड से हमने देखा है कि गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फोकस था, फ्री फूड दिया है या वो दीगा एम्प्लॉयमेंट है वहीं पे उन्होंने खर्चा किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होता है दैट हैज बीन वेरी मच लिमिटेड दिस ईयर। तो मेरे ख्याल में ये अगले चार महीने में द गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी उन्होंने बजट किया है, अगर वो ये करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और जो आप जीएसटी के कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं इसकी दैट इज लिंक डायरेक्टली टू कंजम्पशन, जैसे कि हमने देखा है कि अक्टूबर के महीने में लोगों के स्पेंडिंग जो था दिवाली के लिए दशहरा के लिए जो भी खर्चा हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ दैट वी आर सीन जो भी जीएसटी कलेक्शन है दैट हैज क्रॉस द 1 lakh crore मार्क इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यही बात है कि अगर सस्टेन होगा तो ये कलेक्शन भी ज्यादा होगा नवंबर और दिसंबर में, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर डिमांड रिमेन्स बॉयंट।
जी, सरकार सिस्टम में पैसा डाल रही है तो महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है, इस मुश्किल से कैसे निपटा जा सकता है, खासतौर से अगले आम बजट में सरकार क्या कदम उठा सकती है?
मेरे ख्याल में हम ये दोनों इश्यूज को सेपरेट करना चाहिए, क्योंकि जो भी स्पेंडिंग जो हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल में दिस डज नॉट हैव टू मच ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो अगर हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों है ये यही है कि फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है, और फूड इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों है क्योंकि हमने देखा है कि सब्जियां या दालों में या ये नॉनवेज प्रोडक्ट्स में मीट चिकन उनके बढ़ गए हैं। ये कोई की वजह से नहीं है, लेकिन इट इज ऑन मोर ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई शॉर्टेजेस। जैसे कि हमने देखा है कि ये मॉनसून ज्यादा रही है, इट हैज बीन देयर राइट अप टू अक्टूबर। वैसे तो विड्रॉयल तो सितंबर में होता है, बट बिकॉज ऑफ डिलेड विड्रॉयल ऑफ मॉनसून हमने देखा है कि कहीं क्रॉप्स की हैव गॉटन डिस्ट्रॉयड दक्षिण के एरिया में, अगर हम देखें कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में। इसी की वजह से हमने देखा है कि कैसे प्याज के दाम बढ़ गए थे, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द क्रॉप हैज गॉटन डैमेज, क्यों, बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड रीजन, सीन द प्राइस इन्फ्लेशन। इसीलिए मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन, ज्यादा खर्चा से नहीं हो रहा है, लेकिन सप्लाई का शॉर्टफॉल जो है उसी की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है।
जी शुक्रिया, आपने जीडीपी के ताजा आंकड़ों से जुड़े सवालों के जवाब दिए।
अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1660 में लंदन में द रॉयल सोसाइटी का गठन। 1821 में पनामा ने स्पेन से आजाद होने की घोषणा की। 1890 में महान विचारक और समाजसेवी ज्योतिबा फूले का निधन। 1945 में प्रसिद्ध उपन्यासकार अमर गोस्वामी का जन्म। 1997 में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने दिया पद से इस्तीफा। बात करते हैं मौसम की। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों यनम और अंडमान निकोबार में हो सकती है भारी बारिश। हवाओं के चलते दिल्ली में प्रदूषण का स्तर मॉडरेट यानी औसत रहने की उम्मीद। अब बारी सुविचार की। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, जिस जीवन में परीक्षाएं न ली गई हों वो जीने योग्य नहीं है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपनी साथी कोमिका माथुर के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।